ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही के समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर लगातार पांचवें दिन आज हंगामा जारी किया रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अगले सप्ताह सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी और निचले सदन में आज लगातार पांचवें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। पूर्वाह्न 11 बजे जैसे ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी दलों के सदस्य एसआईआर वापस लो के नारे लगाने लगे। उन्होंने सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं का ध्यान रखने का आग्रह करते हुए कहा कि हमारे पीछे 20-20 लाख लोग हैं जो बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि सदन में हमारे मुद्दों, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंताओं पर चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही करगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी दलों के सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर नारे लगाने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा समाप्त करने का प्रयास करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सदन में यह प्रयास किया है कि सदन चले। प्रश्नकाल सदस्यों का समय है और इसमें सरकार की जवाबदेही तय होती है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधित किया जा रहा है। तख्तियां दिखाई जाती हैं, नारेबाजी की जाती है। अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को किसी विषय पर चर्चा करनी है तो वे आएं, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर सरकार से बात करके चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन सदन के अंदर या सदन के बाहर तख्तियां दिखाना या नारेबाजी करना उचित नहीं है। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है जिनका प्रश्न सूचीबद्ध है। ये अच्छी परिपाटी रही है। उन्होंने तख्तियां दिखाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा और परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। इस बीच उन्होंने विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को पूरक प्रश्न का उत्तर देने को कहा, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्हें सदन की कार्यवाही 11:05 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे फिर शुरू होने पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। वे अपने स्थान पर खड़े होकर एसआईआर वापस लो, एसआईआर पर चर्चा करो नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप स्वयं यह समीक्षा करें कि यह हंगामा किसके हित में है, इसका लाभ किसे मिलेगा, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा। पीठासीन सभापति ने विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा पूछे पूरे सप्ताह सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाले जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर आप सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करेंगे तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पूरे देश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 200 सदस्यों के निजी विधेयक हैं और आज का दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए सूचीबद्ध है। श्री जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह गतिरोध कैसे खत्म होगा, इसे लेकर सदन चिंतित है और पूरा देश भी चिंतित है। शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन आप अपने क्षेत्र की जनता से पूछें कि क्या वे आपको सदन में हंगामा करते देखना चाहते हैं या अपनी समस्याओं पर चर्चा करते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी पहल की है कि सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रास्ता निकाला जाए। इस बीच पीठासीन सभापति ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को गोवा से संबंधित एक विधेयक चर्चा करने के लिए रखने को कहा। मेघवाल ने आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर चर्चा कराई जाए और वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मेघवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अनुसूचित जनजाति के विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति ने कहा कि हंगामे के कारण पूरे सप्ताह सदन में कामकाज नहीं हो सका। इसके साथ ही उन्होंने अपराह्न 2:13 पर सदन की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह्न 11 तक के लिए स्थगित कर दी। सदन में लोकसभा में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ 26 जुलाई के अवसर पर इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कारगिल युद्ध का उल्लेख किया और कहा कि कल 26 जुलाई को पूरा देश भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के अमर प्रतीक कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं और प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में अपनी असाधारण वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और संकल्प का परिचय दिया और विजय प्राप्त की। श्री बिरला ने कहा कि इस अवसर पर हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनके परिवारों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसके बाद सभा ने कुछ पल का मौन रखकर कारगिल युद्ध में शामिल हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1999 में इसी दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की थी जब तुलोलिंग और टाइगर हिल जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों समेत कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों से 3 महीने तक चले संघर्ष के बाद भारत को जीत हासिल हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज सदन को बताया कि आईसीएमआर के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 टीकाकरण से भारतीय युवाओं में अचानक मौत का जोखिम नहीं बढ़ा है। इसमें कहा गया है कि कोविड के दौरान अस्पताल में भर्ती होने, अचानक मृत्यु के पारिवारिक इतिहास और कुछ जीवन शैली संबंधी आदतों के कारण अचानक मृत्यु की आशंका बढ़ गई। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि उसने और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने अचानक मृत्यु के कारणों की जांच के लिए 2 दृष्टिकोणों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि पहला दृष्टिकोण अचानक मृत्यु से जुड़े जोखिम कारकों का पता लगाने के लिए एक पूर्वव्यापी केस कंट्रोल अध्ययन था और अध्ययन का दूसरा दृष्टिकोण वर्चुअल ऑटोप्सी पद्धति का उपयोग करके युवाओं में अचानक मृत्यु की पूर्वव्यापी जांच करना था। आईसीएमआर राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान एनआईई ने मई अगस्त 2023 के दौरान 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 47 तृतीयक देखभाल अस्पतालों में भारत में 18 से 45 वर्ष की उम्र के वयस्कों में अकारण अचानक मृत्यु से जुड़े कारकों का अध्ययन किया। श्री नड्डा ने बताया कि मामले स्पष्ट रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के लिए थे जिनमें कोई ज्ञात गंभीर बीमारी नहीं थी और जिनकी पहली अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के दौरान अचानक अस्पष्ट कारणों से मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मामलों या जिन नियंत्रण समूहों का साक्षात्कार किया गया उनमें कोविड-19 टीकाकरण, संक्रमण, कोविड के बाद की स्थितियां, अचानक मृत्यु का पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान, शराब की आवृत्ति, अत्यधिक शराब पीने और मृत्यु से 2 दिन पहले अत्यधिक तीव्रता वाले शारीरिक गतिविधि के बारे में जानकारी एकत्र की गई। विश्लेषण में कुल 729 आकस्मिक मृत्यु के मामले और 2916 नियंत्रण कंट्रोल शामिल किए गए। श्री नड्डा ने कहा कि यह देखा गया कि कोविड टीके की 2 खुराक लेने से अस्पष्ट आकस्मिक मृत्यु की संभावना काफी कम हो गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली द्वारा आईसीएमआर के सहयोग से और वित्त पोषण के साथ किए गए दूसरे अध्ययन का उद्देश्य युवाओं में अचानक मृत्यु के सामान्य कारणों का पता लगाना है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सदन में कहा कि फलस्तीन के प्रति लंबे समय से चली आ रही अपनी नीति और मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत ने 12 जून संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र का हालिया संकल्प पर मतदान में भाग नहीं लिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में सुब्बारायण के और सिल्वराज वी के प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के प्रति भारत की नीति लंबे समय से चली आ रही है। भारत ने हमेशा वार्ता के माध्यम से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया है ताकि सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो जो इसराइल के साथ शांतिपूर्वक रह सके। उन्होंने कहा कि भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए आतंकी हमलों और इसराइल हमास के बीच मौजूदा संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की कड़ी निंदा की है। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत वहां की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंतित है और उसने युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने फलस्तीन के लोगों को सुरक्षित, समयबद्ध और सतत मानवीय सहायता की आपूर्ति में आवश्यकता पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने यह भी दोहराया है कि इसराइल और फलस्तीन के एक दूसरे के समीप आने से सीधी शांति वार्ता की शीघ्र बहाली के लिए परिस्थितियां तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने उपर्युक्त नीति और स्थिति के अनुरूप 12 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र के हालिया संकल्प पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सोनी। राज्यसभा की कार्यवाही आज भी सोमवार जैसी रही। विपक्षी दलों ने हंगामा किया। बिहार मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान पर सरकार से जवाब मांगते रहे और नारेबाजी करते रहे। भारी शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही का स्थगन हुआ। दोबारा 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो बमुश्किल 5 मिनट ही उपसभापति घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति नवनिर्वाचित सांसद मशहूर सिनेस्टार कमल हासन को संसद सदस्यता की शपथ दिलाई गई। उनके साथ ही डीएमके के वरिष्ठ नेता राजा थी एस आर शिवलिंगम ने भी बतौर नए सांसद शपथ ली। देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन को डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने फिर से राज्यसभा भेजा है। उनका कार्यकाल कल ही समाप्त हुआ था। उन्होंने भी फिर से राज्यसभा की सदस्यता के लिए शपथ ली। सभी सांसदों का कार्यकाल आगामी 6 साल के लिए होगा। उपसभापति ने सरकारी काम के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में सदन पटल पर रखवाने के लिए बारी बारी से केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद रामनाथ ठाकुर, भगीरथ चौधरी, किरण चौधरी, जॉन ब्रिटास, शक्ति सिंह गोहित के माध्यम से पेपर्स सदन पटल पर जरूरी कागजात रखवाए ताकि आगे के विधायी कार्य निपटाए जा सकें। संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने सोमवार से निपटाए जाने वाले विधायी कार्यों की सूची सदन पटल पर रखी। शुक्रवार प्राइवेट मेंबर्स के विधेयकों का दिन होता है। सरकारी कामकाज का राज्यसभा में अपेक्षाकृत दबाव कम होता है। प्राइवेट बिल के रूप में विभिन्न दलों के 64 सांसदों ने निजी विधेयकों के लिए लिखित अर्जी विषय सहित सूचीबद्ध कराई हुई थी, लेकिन जनहित के 5 दर्जन से ज्यादा विषयों में से एक विषय पर भी चर्चा नहीं हो सकी। लोकहित के विषय विपक्षी हंगामों की भेंट चढ़ गए। उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही शुरू करने के बाद नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। विभिन्न संसदीय विषयों पर सरकारी काम के संबंध में सांसदों से वक्तव्य पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने सदन के सदस्यों को नियम 236 के बारे में याद दिलाते हुए इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि कोई भी सदस्य केवल अपनी सीट से ही अपनी बात रखेगा। पीठासीन अधिकारी के बुलाने पर अगर कोई सदस्य बोल रहे हों तो उन्हें दूसरे सदस्य किसी भी स्थिति में बाधा न पहुंचाएं। ऐसा करना अनुशासन की परिधि में आता है। ऐसा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। दरअसल कल जब डीएमके के मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहे थे तो उनके माइक का उपयोग कर तृणमूल सांसद डोला सेन लगातार नारेबाजी कर रही थी। इस पर भाजपा के वरिष्ठ सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नियमों के अंतर्गत अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उसी की प्रतिक्रिया में आज उपसभापति ने सदन में यह व्यवस्था की। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें 27 विपक्षी सांसदों की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव मिला है, लेकिन सभापति द्वारा पहले लिए गए निर्णय के आलोक में एक भी प्रस्ताव उचित नहीं है, इसलिए सभी प्रस्तावों को खारिज किया जाता है। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विपक्षी सांसदों से अपील की कि आज किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है, सभी शांत होकर भाग लें, लेकिन हंगामे नारेबाजी के बीच उनका सुझाव भी दब गया। इस बीच दोपहर 12:05 पर ही घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए भी बात की गई। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।